खंड दो, द्विवेदी युग की आलोचना। अपने युग के आलोचकों में सबसे अधिक प्रखर और निर्मम स्वर कदाचित स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, समय 1864 से 1938 ईस्वी का था। साहित्य की गतिविधियों के नियमन संचालन का भार उन्होंने स्वेच्छया उठा लिया था, जिसे वे पूरी निष्ठा और लगन से आजीवन निभाते रहे। कवियों की अवमानना, व्यंग्य, लानत, मलामत आदि अनेक विधियों से वे कर्तव्य कर्तव्य का निर्देश करते थे। इस भूमिका के निर्वाह में उन्होंने पूरी कड़ाई और जिम्मेदारी का परिचय दिया। परंपरा के दबाव से अधिक उन्हें अपने युग की आवश्यकता का ध्यान था। नायिका भेद आदि विषयों पर रचित ग्रंथों के विषय में उन्होंने स्पष्ट लिखा, इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि न पहुंचेगी, उल्टा लाभ होगा। इनके न होने से ही समाज का कल्याण है, इनके न होने से ही नवयस्क युवा जनों का कल्याण है, इनके न होने से ही इनके बनाने और बेचने का कल्याण है। कवि और कविता शीर्षक निबंध में जड़ परंपरा के प्रेमी पुरातन पंथियों को उन्होंने फटकार बताते हुए कहा, कविता प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नई तरह की स्वाभाविक कविता करने लगता है तो लोग उनकी उसकी निंदा करते हैं। कुछ कहते हैं यह कविता नहीं, नहीं कुछ कहते हैं कि यह कविता तो छंदो विकार में दी गई लक्षण से च्युत है, अतएव यह निर्देश नहीं। बात यह है कि जिसे अब तक कविता कहते आए हैं वह उनकी समझ में कविता है, और सब कोरी काव काव। जिसे अब तक कविता कहते आए हैं मात्र उसी को कविता न कहकर कविता के मूल तत्व को पकड़ने का आग्रह उनके कविता और छंद के पारस्परिक संबंध पर व्यक्त विचारों में देखा जा सकता है। इस विषय में द्विवेदी जी के दृष्टिकोण की आधुनिकता ध्यान देने योग्य है। किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है, नियमानुसार तुली हुई सितारों सतरों का नाम पद्य है। जिस पद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर असर नहीं होता वह कविता नहीं, वह नपीतुली शब्द स्थापना मात्र है। गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। इतना ही नहीं, पिंगल के शास्त्र विहित नियमों को वे कवि स्वातंत्र के मार्ग में बाधक मानते थे। तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बड़ी बाधा आती है। पद्य के नियम के लिए एक प्रकार की बेड़ियां हैं, उनसे जकड़ जाने से कवियों को अपनी स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कवि का काम है वह अपने मनोभावों को स्वाधीनता पूर्वक प्रकट करे। छंद के जिन बंधनों के खुल जाने और वाणी के आयास बह निकलने का उद्घोष बाद में छायावाद के सुकुमार कवि पंत ने किया, उसका मार्ग द्विवेदी जी पहले ही प्रशस्त कर चुके थे। काव्य सृजन में द्विवेदी जी का मत वस्तुतः सहजता के पक्ष में था। जो साहित्य अपने दृष्टिकोण, अपनी रचना पद्धति के में समय की आवश्यकताओं और सामाजिक मर्यादाओं को पूरा नहीं करता, उसे वे साहित्य सत्साहित्य नहीं मानते थे। चाहे उसमें कितनी ही दूर तक शास्त्रीय रीति नीति का पालन हुआ हो, परंपरागत काव्य रचना के किस रूप को वे हीन मानते थे, इसका अनुमान उनके इस मंतव्य से लगाया जा सकता है। हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में न करें। अपने काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस और नायिका निरूपण बहुत हो चुका। उन्होंने अपनी समय सजग दृष्टि से भली भांति पहचान लिया था कि हिंदी भाषा और साहित्य का कल्याण उसे जनजीवन के निकट लाने से ही संभव है। इसलिए कवि कर्तव्य का निर्देश करते हुए उन्होंने काव्य भाषा के संबंध में कहा है, बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। काव्य रचना के लिए जिस ब्रज भाषा माधुरी की अवहेलना भारतेंदु प्रयत्न करके भी न कर सके थे, उस पर यह अंतिम और निर्णायक प्रहार था। बोलने की भाषा में काव्य रचना के आग्रह के पीछे द्विवेदी जी की जनवादी दृष्टि की प्रेरणा रही। इसका प्रमाण यह है कि वह ही द्विवेदी जी जो कवियों को किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलंबन करके एक अच्छा काव्य लिखने का परामर्श देते थे, सदोष उन्होंने पर भी चंद्रकांता संतति का अनुमोदन इसलिए करते थे कि इस उपन्यास के कारण पुरुषों और स्त्रियों में उपन्यास पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई। स्वभावतः उन्होंने कविता की जो कसौटी प्रस्तुत की उसकी मूल दृष्टि जनतांत्रिक थी। जब बोलचाल की भाषा की कविता को जो या आजकल के दूसरे पद्यों को साधारण लोग भी पढ़ने लगे, तब समझना चाहिए कि कविता और कवि लोकप्रिय है। आजकल संस्कृत भरी कविता का रचा जाना और अधिक हानिकारक है। द्विवेदी जी अपने युग के कवियों को परंपरा के निर्जीव या क्षयोन्मुख अंश में से छुटकारा भी दिलाते जाते थे और लोग लगे हाथों एक नई काव्य रुचि के निर्माण का दायित्व तो उनके कंधों पर रखते जाते थे। हिंदी कवि का कर्तव्य है यह है कि वह लोगों की रुचि या विचार रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़ लिखो लोग भी पुरानी कविता के साथ साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। पढ़ने वालों के मन में नई नई उपमाओं को, नए नए शब्दों को और नए नए विचारों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना ही कवि का कर्तव्य है। द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति की एक बहुत बड़ी विशेषता उनकी निर्भीकता थी। जब वे आलोचना करने बैठते थे तो हर मुलाहिजे को उठाकर ताक पर रख देते थे। कालिदास जैसे लब्ध प्रतिष्ठ कवि की परंपरा अनुमोदित प्रशस्तियों से अनतंकित रहकर वे बेखटके उसकी निरंकुशता को उजागर करते थे। इतना ही नहीं, दोष दर्शन की इस प्रवृत्ति के समर्थन में उन्होंने परंपरा की साक्षी प्रस्तुत की, खंडन मंडन और समालोचना की रीति परंपरा में चली आई है। वस्तुतः द्विवेदी जी के लिए समालोचना का अर्थ खंडन मंडन और उसमें भी खंडन ही अधिक था। द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति में जितनी निर्भीक कट्टरता मिलती है ज्ञानार्जन में, उतनी उदार ग्रहणशीलता उनकी समालोचना दृष्टि के निर्माण में ही हिंदी और संस्कृत ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का भी योग था। वे उर्दू, बंगला, मराठी आदि का साहित्य पढ़ते ही नहीं थे, जो उन्हें रुचिकर लगता उसे निसंकोच ग्रहण कर लेते थे। इन प्रभावों को खुलेआम स्वीकार करते थे और जहाँ अन्य साहित्यों की तुलना में उन्हें हिंदी में कुछ कमी दिखाई पड़ती थी, वहाँ वे ललकार कर हिंदी के लेखक को चुनौती देते थे। इस मामले में उन्होंने कभी कोई मुरौवत नहीं बरती। इस बेमुरौवती से पैदा होने वाला खरापन उनके बाद दुर्लभ हो गया। मिश्र बंधु श्री गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र समय 1873 से 1947 ईस्वी और राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र समय 1878 से 1951 ईस्वी की बंधु त्रयी को मिश्र बंधु का नाम से जाना जाता है। आलोचना के इतिहास में इनके हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ का स्मरण तुलनात्मक आलोचना के पुरस्कर्ता होने के नाते किया जाता है। चार भागों में प्रकाशित इनके मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने बड़ी भारी कवित्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर किया और उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को आधुनिक शिष्टता के अनुसार धन्यवाद केवल इसलिए दिया कि रीतिकाल के कवियों के परिचय के लिए प्रायः उक्त ग्रंथों से ही विवरण लिए गए हैं। परिणामतः मिश्र बंधु विनोद की ख्याति कवि वृत्त संग्रह के रूप में हो चली और उसका उपयोग मुख्य रूप से सामग्री ग्रहण के लिए ही किया जाने लगा। इतिहास की भूमिका में और कवियों के मूल्यांकन के क्रम में मिश्र बंधुओं ने जिस आलोचना दृष्टि का परिचय दिया था वह प्रायः उपेक्षित रह गई। इस बात की ओर कम ध्यान दिया गया कि आलोचना की जो पद्धति हिंदी नवरत्न में प्रतिफलित हुई है उसका मूल रूप मिश्र बंधु विनोद में ही बन चुका था। मिश्र बंधु समालोचना का एक निश्चित उद्देश्य मानते थे। समालोचना केवल किसी कवि का हाल ही नहीं बताती, वरन साधारण पाठक समाज में औचित्य भी बढ़ाती है। औचित्य क्या है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा, प्रत्येक पाठक की रुचि भिन्न हुआ करती है, परंतु वह अपनी रुचि के अनुरूप सब ग्रंथ खोजने में सदैव समर्थ नहीं होता। समालोचना से हर एक ग्रंथ का असली रूप धारण करना साधारण पाठक के सम्मुख बिना उसके पढ़े ही उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार समालोचना से उचित एवं उपयोगी पुस्तकों के चुनाव में भी लोगों को बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए शायद उनका आग्रह कवियों में श्रेणी विभाग निर्धारण के प्रति था। कवियों की अपेक्षिक छोटाई बड़ाई कैसे व्यक्त की जाए, अतः श्रेणी प्रथा को हम हटा नहीं सकते। मिश्र बंधु विनोद अच्छे बुरे के बीच अंतर जानकर पाठक सही निर्णय कर पाए, इसके लिए समालोचक का कर्तव्य है कि वह ग्रंथों के ठीक ठीक गुण दोष बताकर ऐसे मनुष्यों की रुचि की भी उचित उन्नति करें। समालोचक के लिए उन्होंने हृदयता और विद्वत्ता दोनों के जो को आवश्यक, क्योंकि समालोचना लिखना भी कोई साधारण काम नहीं है। वही मनुष्य समालोचना लिख सकता है जो ग्रंथ को भलीभांति समझ सके और उनके विषयों से अच्छी जानकारी तथा सहृदयता रखता हो। इस योग्यता और सहृदयता के अतिरिक्त समालोचक को मूल ग्रंथ का भली भांति अध्ययन तथा मनन करने में यथेष्ट समय भी देना पड़ेगा। अतः प्रकट है कि अच्छे विद्वान के सिवा कोई साधारण मनुष्य समालोचक ही नहीं हो सकता। गरज के ये कि समालोचना के लिए शास्त्र की शब्दावली में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों की अपेक्षा है। आलोचक को जिन प्रतिभा सिद्ध होना चाहिए उतना ही उसकी आलोचना को श्रम साध्य होना चाहिए। मिश्र बंधुओं का दावा था कि श्रेणियों में रखने के विचार में हमने केवल काव्य प्रवणता पर ध्यान दिया है, परंतु काव्य प्रवणता को मापने की उनकी यह कसौटी लचीली और उदार थी। इसका अनुमान उनके इस कथन से लगाया जा सकता है, यदि कोई पूछे कि किन गुणों के होने से कम हम काव्य को गौरवान्वित मानते हैं, तो हम विवशतः कहना पड़ेगा कि इन गुणों एवं कारणों को का कथन हर एक छंद के लिए पृथक है। अर्थात रचना विशेष की प्रकृति को ध्यान में रखकर वे किसी कृति के गुण दोष का निर्देश करने के पक्ष में थे, और ऐसा करते हुए वे समालोचक की रुचि को प्रधानता देते थे। इन सब बातों पर समालोचक की रुचि प्रधान है। कोई किसी गुण को श्रेष्ठ मानता है और कोई किसी को, जहाँ तक उनकी अपनी रुचि का प्रश्न है, उन्होंने स्फुट छंदों के गुण दोष को परखने वाली अपनी प्रणाली के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके प्रकट किया है। अपनी आलोचना को यथासंभव वैज्ञानिक और पक्षपातहीन बनाने के लिए मिश्र बंधुओं ने जिस परीक्षा पद्धति का आश्रय लिया वह विचित्र थी। वे कवियों के स्फुट पदों पर नंबर देकर जोड़ घटाकर उनका औसत निकालते थे, और इस क्रम में प्राप्त होने वाले नंबरों के आधार पर उनकी श्रेणी विभाग करते थे। इस पद्धति से उनके निर्णयों की निष्पक्षता भले ही सिद्ध होती हो, पर इसे आलोचना की कसौटियां सामने नहीं आती। यद्यपि उन्होंने हर एक छंद के लिए पृथक गुणों और कारणों के लिए कथन की छूट ली, तथापि मोटे तौर से कविता में उन्होंने जिन बातों को विचारणीय माना, उनसे यह तत्काल आभास हो जाता है कि उनकी रुचि और काव्य संस्कार रीतिबद्ध था। वे किसी कविता के समालोचनार्थ निम्नलिखित विषयों को विचारणीय मानते थे। पदार्थ निर्णय, पिंगल, गड़ागड़, गुण दोष, भाव, रस, वृत्ति, पात्र, नायिका भेद के अनुसार अलंकार, काव्यांग आदि। यद्यपि उन्होंने अपनी अधिकांश व्यावहारिक आलोचना में, विशेषकर स्फुट छंद विवेचन में, प्राय इसी क्रम का निर्वाह किया, तथापि उनके द्वारा की गई विभिन्न कवियों की आलोचना से यह स्पष्ट है कि वे रचना की प्रकृति को भी ध्यान में रखते थे। अपनी आलोचना शैली के उदाहरण के रूप में उन्होंने बिहारी और तुलसी के छंदों की विशेषताओं का निरूपण करते हुए जो निष्कर्ष दिया है, उसकी तुलना में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। तुलसी के छंद के बारे में उनका कहना है, सब बातों के ऊपर यहाँ रामचंद्र का महत्व और कवि की उनमें प्रगाढ़ भक्ति मुख्य है। सो तात्पर्याख्याति वृत्ति सर्वप्रधान है। कुल बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट है कि यह रचना उत्तम काव्य है, और बिहारी के दोहों के संबंध में उनका निष्कर्ष यह है कि व्यंग कविता का जीवन कहलाता है। सो यह रचना उत्कृष्ट है। इस प्रकार हिंदी नवरत्न में बिहारी के संबंध में उनकी यह उक्ति इस बात का प्रमाण है कि कविता के मर्म की पहचान और समझ उनमें पर्याप्त थी। उनकी कविता में काइयापन भरा पड़ा था है, अतः इसमें इशारेबाजी की भी कोई हद नहीं। इनके पद इतने अच्छे हैं कि बहुत से मसले हो गए हैं। बातें हाथी पाव इत्यादि। वे अपने दृष्टिकोण के में उदार और आधुनिक थे, किंतु उनके काव्य संस्कार निर्माण में रीति काव्य का बहुत बड़ा हाथ था। यह बात उनके द्वारा व्यक्त सम्मतियों में रह रहकर छलक पड़ती उठती है। तुलसीकृत रामायण की प्रशंसा वे अपने इस कारण करते हैं कि समस्त रामायण में इस प्रकार की स्तुतियां बहुतेरी होंगी। इस प्रकार रामचंद्र के नखशिख वर्णनों का बाहुल्य है। इन दोनों विषयों की रचना में इन महाकवि ने अपनी अलौकिक कवित्व शक्ति और पांडित्य का चमत्कार दिखलाया है। तुलसी के काव्य में कुल मिलाकर प्रशंसा योग्य यदि कवित्व शक्ति और पांडित्य चमत्कार ही दिखाई पड़े, तो यह आलोचकों के पांडित्य प्रेम का ही प्रमाण समझा जाएगा। आधुनिक दृष्टिकोण से कोई नवीन मानदंड प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। उनकी आलोचना की कसौटी या रीतिकालीन काव्य शास्त्र के परिचय से ही प्रेरित थी। मिश्र बंधुओं की आलोचना दृष्टि मुख्य रूप से कृतिनिष्ठ थी, और मूल्यांकन के निमित्त वे साहित्यिक प्रतिमानों को ही प्राथमिकता देते थे, परंतु राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बदलते सामाजिक वैचारिक संदर्भों की ओर भी वे यथासंभव ध्यान देते चलते थे। तुलसी काल के बारे में उनका कहना था कि इस देवकाल देश में जो इस प्रकार स्वराज्य स्थापित हुआ, उससे हिंदुओं में जातीयता की भी वृद्धि हुई। युक्त मुसलमान राज्य तो एक ही धक्के से ऐसे बिगड़े कि उनका पता तक न लगा, किंतु छोटे से हिंदू राज्य मेवाड़ में ने 20 वर्ष अकबर से लोहा बजा अपनी स्वतंत्रता स्थापित ही रखी। भारत में यही पहला युद्ध था जो राज्य के कारण न होकर विचारों के लिए हुआ। कुल मिलाकर तुलसी काल में हम जातीयता की भी अच्छी वृद्धि देखते हैं, और इस काल को स्वराज्य सा पाते हैं। सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनों के व्यापक परिदृश्य और उससे पैदा होने वाले वैचारिक संदर्भ में रखकर साहित्य को समझने का यह प्रयत्न उनकी दृष्टि की व्यापकता का संकेत देता है। कवियों के संदर्भ में भी वे जितना महत्व उनके साहित्य को देते थे, उतना ही अपने इतिहास प्रेम के कारण उनके जीवन वृत्त को भी साहित्य के अतिरिक्त हिंदी भाषा के विकास और उसकी स्वायत्तता प्रतिष्ठा के लिए के प्रश्न को लेकर भी वे विशेष चिंतित, विकास और उसकी स्वायत्तता प्रतिष्ठा के प्रश्न की निजी स्वायत्तता आलोचना पद्धति के विकास की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्र आलोचना प्रणाली के अस्तित्व की घोषणा एकाधिक स्थलों पर की। हमारे जहाँ इतने आचार्य हो गए कि हिंदी वालों के संस्कृत रीति ग्रंथ पढ़ने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रही। वस्तुतः उनकी इस चिंता के पीछे हिंदी साहित्य को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने की भावना काम कर रही थी। इस दृष्टि से उनका हिंदी भाषा विचार विशेष महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में विचार करते हुए उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हिंदी न में कम से कम लेखन शैली प्राय पूर्ण तथा संस्कृत व्याकरण से नियमबद्ध होनी चाहिए। इस मत के समर्थकों से उन्हें शिकायत थी कि वे ऐसे महानुभाव यह बात प्राय बिल्कुल भूल जाते हैं कि संस्कृत और हिंदी दो अलग-अलग भाषाएं हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास की भूमिका में व्याकरण की दृष्टि से तो हिंदी भाषा पर विचार किया ही है, किंतु भाषा के स्वरूप के बारे में उनकी दृष्टि की जनतांत्रिकता का अनुमान उनके इस कथन से लगाया जा सकता है। हिंदी एक जन समुदाय की सरल भाषा है और उसके दुर्गम एवं जटिल बना देने का एकमात्र परिणाम यही होगा कि 5-7 वर्षों के उत्कट परिश्रम बिना किसी को अपनी मातृभाषा का भी बोध न हो सकेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि साधारण जन समुदाय में एकदम विद्यानुराग जागृत नहीं हो सकता। अतः अगत्या अपढ़ और कुपण एवं साधारण पढ़े लिखे लोगों की भाषा कोई और ही हो जाएगी। व्याकरण के जिन प्रश्नों पर उन्होंने विचार किया, उनमें भी उनकी दृष्टि मुख्यतः हिंदी की स्वतंत्र प्रकृति का समर्थन करने की ओर ही रही। विभक्ति, प्रत्यय, लिंग भेद, नियम, शब्दों के नए रूप, लिपि प्रणाली आदि अनेक व्याकरण संबंधी विषय उनके विवेचन में इसलिए स्थान पा सके क्योंकि वे हिंदी को संस्कृत के भार से मुक्त जन समुदाय की सरल भाषा के रूप में देखना दिखाना चाहते थे। अपने समय के पंडित श्रीधर पाठक की रचनाओं को और बातों के अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने इसलिए भी पसंद किया कि खड़ी बोली में रचना हमारे साहित्य में अब अत्यावश्यक है और हमारे पाठक जी ऐसे सुकवि ने इस ओर ध्यान दे हिंदी भाषा की अच्छी सेवा की है। एकांतवासी योगी और जगत सच्चाई सार खड़ी बोली रचनाओं के आदर्श स्वरूप हैं। पाठक जी द्वारा रचित कविता हिमालय की प्रशंसा उन्होंने जिन गुणों के लिए की है, वे रीतिकालीन काव्य शास्त्र के मोह से बहुत कुछ मुक्त है। यह संपूर्ण पद्य बड़ा ही विशद है और कवि जी की सूक्ष्मदर्शिता इससे पूर्णतया विदित होती है। उन्होंने वानरों का कौतूहल, जीवों का झरनों से जलपान करना, खेतों का तर ऊपर दृष्टि को गोचर होना, प्रतिध्वनि का सुनाई देना, यह सब कुछ ऐसी रीति से लिखा है कि ज्ञात होता है यह केवल चित्त की उपज नहीं है। पर जब वे इन्हीं श्रीधर पाठक की आलोचना पर उतारू हुए तो उन्हें छंदोभंग का तथा समस्या पूर्ति और चित्र काव्य करने का दोषी ठहराया। मिश्र बंधुओं ने श्रीधर पाठक की कविता पर ध्यान देकर उसकी जो समीक्षा प्रस्तुत की, उससे यह स्पष्ट है कि वे अपने समय की नवीन काव्य चेतना के प्रति जागरूक थे। उनकी काव्य रुचि मूलतः रीतिकालीन थी, पर उन संस्कारों से मुक्त खड़ी बोली का की नहीं, नई काव्य प्रवृत्ति के वे उदार गुण ग्राहक थे। श्रीधर पाठक के विभिन्न काव्यों पर अपनी राय देने का उत्साह उन्की भविष्योन्मुखता और पक्षपातहीनता को प्रमाणित करता है। वस्तुतः आलोचना में पक्षपातहीनता के वे कायल थे। लेखक के कर्तव्य के बारे में उनका कहना था कि प्रत्येक लेखक का कर्तव्य है कि पक्षपात रहित मान्य समालोचनाओं द्वारा किन्हीं हिंदी का भंडार भरे। व्यवहार में इस पक्षपातहीनता का परिचय वे इतनी दूरी तक देते थे कि वे आचार्य शुक्ल जी को उन्हीं के शब्दों में मिश्र बंधुओं का नाम सुनते ही जामे से बाहर हो जाते हैं। उनके साहित्य के फुटकर खाते में स्थान ही नहीं प्रशंसा भी पाते हैं। उनके आलोचक तो क्या सफल साहित्य लेखक होने के संबंध में भी शुक्ल जी ने शंका प्रकट की है। इसमें संदेह नहीं कि मिश्र बंधु विनोद वृत्त संग्रह है और वृत्त संग्रह इतिहास नहीं होता, पर साथ ही इसमें भी संदेह नहीं कि हिंदी में साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा का आरंभ इसी वृत्त संग्रह से हुआ। यदि मिश्र बंधुओं ने शुक्ल जी से पूर्व इतनी सामग्री इकट्ठी प्रस्तुत न कर दी होती तो स्वयं शुक्ल जी के लिए इतिहास लेखन का कार्य कहीं अधिक श्रम साध्य हो गया होता। आज भी आखर ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ का महत्व यथावत है। मिश्र बंधुओं ने अपने नवरत्न में कवियों का जो श्रेणी निर्धारण किया था उससे हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की नींव पड़ी। उनके उपरांत पंडित पद्म सिंह शर्मा समय 1876 से 1932 ईस्वी ने बिहारी सच्चाई पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। इस ग्रंथ को देखने से साफ पता चलता है कि और बातों के अतिरिक्त इसकी रचना की प्रेरणा नवरत्न से मिली। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने आर्या सप्त सती और गाथा सप्त सती के अनेक पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का मिलान किया। पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपरा के विचार में बिहारी को रखकर देखने का अत्यंत विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया। उन्होंने हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों से तुलना करके भी बिहारी का तारतमिक महत्व निरूपण किया, परंतु यह भी स्पष्ट है कि इस पुस्तक की रचना मुख्य रूप से उन बहुत से आक्षेपों के परिहार के उद्देश्य से की गई थी जो देव को ऊंचा कवि सिद्ध करने के लिए बिहारी पर लगाए गए थे। जितने आग्रह से मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा कवि सिद्ध करने का प्रयत्न किया था उतने ही आग्रह से पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के प्रति अपना पक्षपात व्यक्त किया। वस्तुतः सच्चाई की व्याख्या तो वे अपने संजीवनी भाष्य में ही प्रस्तुत कर चुके थे। यह ग्रंथ और बातों के अतिरिक्त मुख्यतः बिहारी को देव से ऊंचा कवि सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। पंडित पद्म सिंह शर्मा की समीक्षा दृष्टि प्रधान रूप से परंपरागत है। उनके संजीवनी भाष्य से स्पष्ट है कि दोहों में वे कौन सी विशेषताओं पर मुख्य रूप से दृष्टि टिकाते हैं और किन बातों को व्याख्याएं समझते हैं। कवि ने इस दोहे में कमाल किया है। फड़का देने वाले अति चमत्कृत अर्थ के साथ शब्द रचना और वाक्य विन्यास भी बड़ा ही सुंदर है। केवल बाल और लाल दोनों संबोधन पद ही लाल की जोड़ी से कम कीमत के नहीं है। जाहिर है कि चमत्कार खोजने वाले इस दृष्टिकोण की चरम परिणति इस वाहवाही में ही हो बात हो सकती है। ये क्रोध से लाल नहीं है। इस चक्करदार खुले हुए उत्तर में वह बात कहाँ है जो लाल तिहारे द्रिगन की परी द्रिगनी में छाह इस सीधी सादी तड़ाक फड़ाक हाजिर जवाबी में है। पंडित पद्म सिंह शर्मा की आलोचना शैली का अंदाज सर्वत्र यही है। इसे आचार्य शुक्ल ने खटकने वाली बात के रूप में देखा है और बिना हुजूर जरूरत के जगह जगह चूहलबाजी और शाबाशी की महफिली तर्ज कहा है। शर्मा जी की कविता में चमत्कार खोजते थे और जहाँ उन्हें कहीं उन्हें चमत्कार दिखाई पड़ता था वहाँ उसे चमत्कारपूर्ण शैली में पूरी तड़क भड़क के साथ कहते थे। उनके अनुसार महाकवि वही है शब्दार्थ में निराली तू नूतनता पैदा करने करके जो प्राचीन भाव को चमत्कृत बना देता है, यानी उनकी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण भाव का नया पुराना होना नहीं चमत्कार पूर्ण होना है। वे काव्य रसिक थे, अतः उनके लिए काव्य में विषय रूप रचना आदि से अधिक सरसता का महत्व था। अपने समय की नीति प्रधान खड़ी बोली कविता को साहित्य के क्षेत्र में वे सुखी टहनी समझते थे। उनका विश्वास था कि जिस भावहीन निर्जीव भाव में निरस कर्ण कटु काव्यों के आज दिन सृष्टि हो रही है वह टिकाऊ नहीं, क्योंकि और काम चलाऊपन के साथ भाषा में सरसता और टिकाऊपन भी अभीष्ट है, तो इसके निस्सार शरीर में प्राचीन साहित्य के रस का संचार होना आवश्यक है। मुक्तक बंध उन्हें इसलिए कवित्व शक्ति का चरमोत्कृष्ट रूप प्रतीत होता था क्योंकि उस अकेले ही पद्य में विभाव अनुभाव आदि से परिपुष्ट इतना रस भरा हो कि इसके स्वाद से पाठक तृप्त हो जाए। सहृदयता की तृप्ति के लिए उसे अगली पिछली कथा का सहारा न ढूंढना पड़े। स्पष्ट है कि पंडित पद्म सिंह शर्मा का काव्य संसार भी उसी हद तक रीतिकालीन था जिस हद तक बंधुओं का केवल व्यक्त करने की शैलियां भिन्न थी। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने तुलना करते हुए प्रायः संस्कृत उर्दू फारसी तीनों भाषाओं की रचनाओं से उदाहरण लिए, इससे उनकी बहुज्ञता तो प्रमाणित तो होती ही है, साथ ही उनकी शैली पर उर्दू शायरी की महफिल दाद के तौर तरीके का प्रभाव भी समझ में आता है। किन्हीं दो रचनाओं की तुलना करते समय शर्मा जी का ध्यान मजूमन पर न रहकर अंदाजे बयां पर रहा करता था। उनका विश्वास था कि प्राचीन कवियों ने कोई बात नए कवियों के लिए ऐसी नहीं छोड़ी है जिसे वे वर्णन न कर गए हों, लिहाजा परवर्ती कवियों के पास उन्हीं का अनुसरण करने के सिवा चारा ही क्या था। अतः नए कवियों की सफलता इसी से हो सकती थी कि वे प्राचीन कवियों से मूल भाव ग्रहण करें, उसे नया बना पहना दें। इसे वे मजूमन छीन लेना कहते थे। वे बिहारी सच्चाई के दोहे की तुलना गाथा सप्तशती अमरूक शतक संस्कृत हिंदी और उर्दू के अन्य कवियों से निसंकोच करते थे। जहाँ उन्हें समानता लगता संयोग जन्य दिखाई पड़ता उसे वे मजूमन छीन लेने के बजाय मजूमन लड़ जाना कहते हैं, पर तुलना करने के से बाज नहीं आते। इस बात का प्रमाण है कि तुलनात्मक अध्ययन को वे आलोचक का प्रधान कर्तव्य समझते थे। उनके अनुसार सच्चाई के काव्य सौष्ठव का अर्थ है उसका तुलनात्मक सौष्ठव। यह बात अलग है कि इस दृष्टि से उन्हें बिहारी की सर्वोत्तम कवि जान पड़ते हैं। उनके अनुसार भाव का ऐसा अपहरण चोरी नहीं होती। उन्होंने बिहारी सच्चाई में अर्थाव प्रकरण पर विस्तार से विचार किया है और संस्कृत के आचार्यों का साक्ष्य देते हुए उसका औचित्य निरूपण किया है। बिहारी के एक दोहे पर गाथाकार के प्रभाव की व्याख्या के इस रूप में करते हैं, पर बिहारी लाल भी तो एक काइया ठहरे, वह कब चूकने वाले हैं, पहलू बदल कर मजूमन को साफ ले ही उड़े, अज्यो न आए सहज रंग विरह दुबरे गात, वाह उस्ताद क्या कहने हैं, क्या सफाई खेली है, काया ही पलट दी, कोई पहचान सकता है, वहां गाथा में केवल गुलझट पेड़ कोस केस ही थे, यहाँ विरह दुबरे गात हैं। शैली की सारी सफाई और विदग्धता के बावजूद उनकी समीक्षा में अंतर्निहित चमत्कार प्रेमी रीतिकालीन दृष्टि सर्वथा स्पष्ट है। कहीं कहीं पुराने विषयों की व्याख्या में उन्होंने अपने युग के अनुरूप आधुनिकता का आभास दिया है। सात्विक भाव की परिभाषा वे इस प्रकार करते हैं, सत्व कहते हैं जीव शरीर जीवित जिंदा शरीर को, उसके जो धर्म वे गुण या चिन्ह जिनसे जीवन सत्ता की प्रतीति हो जिंदगी का सबूत मिलता है वे सात्विक भाव कहलाते हैं। ऐसे स्थल पर बहुत विरल है, मूलतः उनका संस्कार रीतिकालीन है और दृष्टि रूढ़िबद्ध, उनसे आचार्य शुक्ल की शिकायत सही थी, दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंत प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है प्रयत्न इसमें नहीं हुआ है। पंडित पद्म सिंह शर्मा के अतिरिक्त तुलनात्मक आलोचना के इस दौर को जारी रखने का श्रेय पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र को है। उन्होंने अपने ग्रंथ देव और बिहारी में इन दोनों कवियों के काव्य का तुलनात्मक विवेचन किया और मतिराम ग्रंथावली की भूमिका में सर्वाधिक पृष्ठ इसी प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन को समर्पित किए। उनके समय में तुलनात्मक आलोचना का इतना बोलबाला था कि उन्होंने मतिराम से तुलना के लिए विभिन्न कालों के परस्पर सर्वथा भिन्न कवियों को विषय बनाया। भले ही उनमें विषय भाव बोध शैली शिल्प की दृष्टि से कोई समानता न हो, वे मतिराम की तुलना सूर तुलसी से भी करते हैं और रसखान रहीम से भी, देव बिहारी चिंतामणि से भी और रविंद्रनाथ ठाकुर से भी। तुलना के लिए दृष्टिकोण की जो व्याप्ति कहाँ तक उचित कही जा सकती है, ऐसी स्थिति में तुलना का आधार एक ही हो सकता है। विषय विशेष के अंकन में कवि का कौशल वस्तुतः किसी भी कवि की तुलनात्मक आलोचना को वे आलोचक कर्म का एक प्रमुख अंग समझते थे। समालोचक के दायित्व और उसकी कसौटियों के बारे में उनकी स्पष्ट राय थी। समालोचना से यह अभिप्राय है कि कवितागत गुण दोष पर विचार किया जाए। गुण दोष क्या है इसका पता काव्यशास्त्र के ग्रंथों के अध्ययन से मालूम हो सकता है। काव्यशास्त्र में कविता की उत्तमता या हीनता की जो कसौटी दी गई है उसमें रस अलंकार भाषा गुण दोष लक्षणा व्यंजना आदि पर विचार करना पड़ता है। मिश्र जी के इस कथन से उनके दृष्टिकोण की रीतिबद्धता स्पष्ट है। दिलचस्प बात तो यह है कि इन विषयों के विवेचन के लिए संस्कृत के मूल ग्रंथों को छोड़कर रीतिकालीन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं। ब्रजभाषा में इन विषयों पर अच्छी तरह विवेचन हुआ है, इस विषयों के अनेकानेक ग्रंथ मौजूद हैं। संभवतः इसलिए रस प्रकरण में मिश्र जी सरकार कवि का उल्लेख पहले करते हैं, संस्कृत के कवियों का बाद में, मिश्र बंधुओं की तरह पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र भी अंग्रेजी समालोचना के उत्कर्ष और प्रगति के विषय में विशेष सजग थे। शायद भीतर ही भीतर वे उसे कहीं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विषय मानते थे। उस युग में समालोचना की एक बहुत बड़ी उपयोगिता इस बात में समझी जाती थी कि वह साहित्य के प्रचार में योग देती है और कृतियों का गुण दोष विवेचन करके साहित्य के चुनाव में पाठकों की सहायता करती है। मिश्र बंधुओं के समान पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी आलोचना के विषय में इस प्रकार का मत प्रकट किया है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने काव्य संबंधी कुछ अन्य विषयों के बारे में भी अपनी धारणाएं व्यक्त की हैं। शब्द अर्थ के ऐसे सानिध्य को वे काव्य मानते थे जो रमणीय हो, और रमणीयता को वे आनंद की उत्पत्ति का हेतु स्वीकार करते थे। कविता की रमणीयता से उत्पन्न आनंद को उन्होंने लोकोत्तर कहा, और अपने मत की पुष्टि में क्रमशः कुलपति मिश्र, मम्मटाचार्य, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अंग्रेजी कवियों वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि के मत उद्धृत किए हैं। काव्य की का उपभोक्ता उन्होंने सहृदय रसिक जन को माना। रस, अलंकार व शब्द चित्र आदि को उन्होंने रमणीयता का पोषक कहा, और ध्वनिवादियों का अनुकरण करते हुए व्यंजना प्रधान काव्य को सर्वोत्तम माना। कुल मिलाकर वे रसवादी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अपेक्षा ध्वनिवादी आचार्य जगन्नाथ के अधिक निकट पढ़ते हैं। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र के काव्य में आनंदवादी मूल्यों की को नैतिक उपयोगितावादी मूल्यों से कहीं ऊंचा स्थान देते हैं। नैतिक मूल्यों को वे कदाचित काव्येतर मूल्य मानते थे। श्रृंगारिक कविता के संबंध में उनका कहना था, विषय रस में सराबोर कविता में भी रमणीयता है, इसलिए चाहे वह उपयोगिनी न हो और चाहे उसके द्वारा समाज में किसी प्रकार के कुरुचि के भावों को आश्रय मिला हो, परंतु वह कविता अवश्य है। कविता क्षेत्र में उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। वे कवि को नैतिक मुलाहिजों से पूरी तरह मुक्त रखने के पक्ष में थे। प्रेम वर्णन के लिए वेश्या और स्वकिया के बीच चुनाव की स्वतंत्रता वे चित्रकार को देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए शुद्धता और नैतिकता के अभियान का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। हम कुरुचि प्रवर्तक कविता के समर्थक नहीं हैं, परंतु श्रृंगार कवित्व के विरुद्ध जो आजकल धर्म युद्ध सा जारी कर रखा गया है, उसकी घोर निंदा करने में से भी नहीं हिचकते। कविता के लिए केवल रस परिपाक चाहिए। उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर ललित कला का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं। उन्होंने देव और बिहारी तथा मतिराम ग्रंथावली की भूमिका में विस्तार से श्रृंगार के रस राजत्व को प्रमाणित किया। ऐसा करते हुए भिन्न कवियों और विचारकों के मतों से अपने मत की पुष्टि भी की, और इसी क्रम में नायिका भेद के अपने विस्तृत ज्ञान का प्रमाण दिया। मिश्र जी के दृष्टिकोण की रीतिबद्धता का प्रमाण उनकी व्यवहारिक आलोचना में मिलता है। किसी पद में उनकी आलोचना के विषय इस प्रकार होते हैं, पिंगल, रस, गुण, वृत्ति, रीति, पात्र, ध्वनि, दोष, अलंकार। मतिराम के काव्य में और बातों के अतिरिक्त वे उनके प्रकृति विज्ञान और लोक प्रसिद्ध ज्ञान के कायल हैं। यद्यपि मतिराम के काव्य में दोषों की चर्चा करते हुए उनके काव्य में कहीं कहीं तन्मयता की कमी की शिकायत भी हुई की गई है, पर मिश्र जी उनके कला नैपुण्य से बहुत प्रभावित हैं और यह छिपा नहीं है। अपने इस रीति प्रेम के बीच कहीं कहीं मिश्र जी ने अपने विवेचन में आधुनिकता का परिचय दिया है, विशेषकर भाषा सौंदर्य विवेचन के संदर्भ में। अच्छी भाषा के लिए वे जिन गुणों की आवश्यकता समझते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। भाव प्रकट करने के पूर्ण सामर्थ्य, पाठक को लेखक या कवि के अभिप्राय तक पहुंचा देने की क्षमता, ठीक मतलब की बात बहुत थोड़े से शब्दों में प्रकट कर देना। इसके अतिरिक्त सरलता, कृत्रिमता का अभाव, स्वाभाविकता, तरोताजगी और नव भाव आवश्यकता और परिस्थिति के अनुकूल झुक जाने की सामर्थ्य यानी लचकीलापन आदि कहने की आवश्यकता नहीं कि इस दृष्टिकोण के पीछे शास्त्रीयता का नहीं समय का अनुरोध है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने भाषा संबंधी अपने विचारों को अपनी आलोचना के में व्यवहार में उतारा। उनकी आलोचना की भाषा सर्वथा स्पष्ट, सरल और सजल है। उसमें न आडंबर है न चुहल। उन्होंने सीधे सरल ढंग से आधुनिक भाषा में रस और तत्संबंधी अन्य विषयों की पुनर्व्याख्या का प्रयत्न किया है। श्रृंगार का रस राजस्व सिद्ध करने के लिए अर्नाल्ड शैली आदि के मतों को उद्धृत कर अपने मत को अधिकाधिक पुष्ट बनाने का प्रयत्न किया। वे अत्यंत सहृदय आलोचक थे और अपने दायित्व को बहुत गंभीरता से निभाते थे। आचार्य शुक्ल ने इसलिए उनकी रचना देव और बिहारी को पुरानी परिपाटी और साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य माना है। इसलिए तुलनात्मक आलोचना पर भी उनके निष्कर्षों में कहीं देव या मतिराम को लेकर किसी प्रकार की अनावश्यक हठवादिता या अनुचित पक्षपात नहीं मिलता, परंतु उनकी सहृदयता की छटा रीतिकालीन कविताओं में के व्याख्यान विश्लेषण में भी है सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। यत्र तत्र आधुनिकता का आभास देते रहने पर भी वे मिश्र बंधु एवं पंडित पद्म सिंह शर्मा की रीति संस्कार के ही आलोचक कहे जाएंगे। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र को देव और बिहारी के जवाब में लाला भगवान दीन 1866 से 1930 ईस्वी ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने इन आक्षेपों पर भी विचार किया जो मिश्र बंधुओं ने बिहारी पर लगाए थे। उनकी सख्ती, बिहारी पर लगाए आक्षेपों का उत्तर देने में अधिक खर्च हुई। बिहारी के काव्य विवेचन में नहीं, बिहारी की रक्षा में लाला जी ने कहीं कहीं विनोद का आश्रय लिया। कटुता से भरसक बचे रहकर भी कहीं कहीं उन्होंने बदले में देव पर आक्षेप कर डाले। बिहारी का आक्षेप परिहार के अतिरिक्त लाला भगवान दीन ने बिहारी और केशव के काव्य पर जो टीकाएं लिखी उनसे उनकी रीतिकालीन काव्य की समझ और अध्यवसायी प्रकृति प्रमाणित तो होती है। इसके अतिरिक्त केशव की टीका का उपयोगिता की दृष्टि से विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। यदि लाला जी ने केशव साहित्य की टीकाओं को के माध्यम से सुलभ न किया होता तो केशव का पठन पाठन संभव हो पाता, इसमें संदेह है। द्विवेदी युग की आलोचना के लिए यह शुभ ही हुआ कि तुलनात्मक आलोचना की यह प्रवृत्ति बहुत आगे नहीं बढ़ी। रीतिकाल के कवियों को लेकर इस युग में जो विवाद हुआ उससे आलोचकों में कवि विशेष की कविता को लेकर रुचि भेद तो सिद्ध होता है किंतु संस्कार भेद नहीं। पंडित मिश्र बंधु, पंडित पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन आदि देव और बिहारी को लेकर परस्पर कितने ही जूझते रहे हों, किंतु उनके काव्य विवेचन से यह स्पष्ट प्रमाणित तो होता है कि इन सभी को काव्य संस्कार मूलतः रीतिकालीन था। वे अपने समय के साहित्य मूल साहित्य का अधिक से अधिक नोटिस ले सकते थे, उसका रसास्वाद नहीं करते थे। वे मूल रूप से रीतिकाव्य मर्मज्ञ थे, इसलिए लाला भगवान दीन को अपने समय के कविता में दोस्त ही दोस्त दिखाई पड़े। कुछ लोगों ने इस युग के आलोचकों में प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार श्री बाल मुकुंद गुप्त को भी स्थान देने का प्रयास किया है, किंतु यदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ फुटकर लेख और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने से होने वाली नोक झोंक उन्हें आलोचक पद का अधिकारी बना देती है, तो अधिक उचित यह होगा कि उन बहुत से लेखकों का विवरण भी एकत्र किया जाए जो उस समय सरस्वती एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित छिटपुट आलोचनात्मक रचनाओं के माध्यम से सामने आए। द्विवेदी युग में कुल मिलाकर दो प्रकार की आलोचना पद्धतियां प्रमुख रूप से सामने आई। एक तो वे आलोचक जिनकी काव्य रुचि रीतिबद्ध थी, जिन्होंने या तो रीतिकाल में कवियों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया या काव्य उस काव्य के अर्थ प्रकाशन पर ध्यान दिया। वे आलोचक निश्चय ही काव्य मर्मज्ञ थे, किंतु इनकी साहित्य रसिकता एक विशेष प्रकार के साहित्य तक सीमित थी। ये रीति साहित्य की मार्मिक एवं विशद व्याख्याओं एवं टीकाओं में संलग्न रहे। इस प्रकार ये आलोचक एक ओर तो इस साहित्य को समझने समझाने का मार्ग प्रशस्त करते रहे और दूसरी ओर इनकी व्याख्याओं के माध्यम से इस साहित्य की शक्ति और सीमाएं भी सामने आईं। इन आलोचकों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि इन्होंने रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन की परंपरा को कायम रखा, किंतु उन्होंने आलोचना की जो पद्धति अपनाई उसका आधार भी यही साहित्य था। अतः अपने युग की नई चेतना के साथ ही ये न्याय न कर सके। इनकी आलोचना के प्रतिमान शुद्ध साहित्यिक प्रतिमान थे, जिनमें काव्य के शैली पक्ष शैली शिल्प के परीक्षण का विधान तो सिद्ध था, किंतु सामाजिक चेतना के अथवा कवि की अंतस चेतना के संदर्भ में साहित्य को देखने परखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वस्तुतः यह रीतिकाल की आलोचना पद्धति का खड़ी बोली संस्करण था। आलोचना की दूसरी प्रवृत्ति उन आलोचकों में दिखाई पड़ी जिन्होंने अपनी समय सजग दृष्टि से यह जान लिया था कि काव्य रचना और आलोचना दोनों के लिए परंपरागत रीतिबद्ध दृष्टिकोण व्यर्थ हो चुका है। वे एक नई काव्य रुचि के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करते जाते थे और अनुरोध भी, पर अपनी आलोचना में किन्हीं नए मानदंडों की खोज में वे भी नहीं कर पाए थे। काव्य भाषा के प्रश्न को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस विवाद को निर्णायक रूप दिया, उससे निश्चय ही उनकी आधुनिकता और लोक दृष्टि का परिचय मिलता है। यह प्रयास केवल गद्य और पद्य की भाषा को एक करने का साहित्यिक प्रयास नहीं था, बल्कि साहित्य और जीवन की भाषा को एक करने का विराट सामाजिक प्रयत्न था। जीवन के संदर्भ में साहित्य को जांचने परखने का आग्रह उनके नैतिक उपयोगितावाद के रूप में दिखाई पड़ा। उनके समय की कतिपय अन्य रीतिबद्ध और कृति केंद्रित आलोचना में भी एक अलक्षित परिवर्तन दिखाई पढ़ने लगा था। मिश्र बंधुओं जैसे रीतिबद्ध रुचि और संस्कार रखने वाले आलोचकों भी यत्र तत्र काव्य के मूल्यांकन के बदलते सामाजिक संदर्भों की ओर ध्यान देने लगे थे और नई चेतना के संवाहक श्रीधर पाठक जैसे कवियों के काव्य का मूल्यांकन उनके प्रति अपने झुकाव का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे। काव्य कृति के मूल्यांकन में उनके द्वारा प्रयुक्त परीक्षा पद्धति भले ही विशेष वैज्ञानिक न रही हो, लेकिन इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि वे आलोचना को यथासंभव वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह मुक्त रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता का अनुभव करते थे। इस आग्रह के बावजूद यह उस युग की आलोचना की विडंबना कही जाएगी कि आलोचकों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश निर्णयों का आधार उनकी अपनी रुचि ही रही है। निष्कर्ष रूप में द्विवेदी युग की आलोचना में कृति के गुण दोष निरूपण तुलना शैली विवेचन आदि के अतिरिक्त जीवन के संदर्भ में साहित्य की उपयोगिता की परख की ओर तो ध्यान दिया जाने लगा था, किंतु कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की छानबीन आरंभ नहीं हुई थी। खंड 2, द्विवेदी युग की आलोचना समाप्त।